एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार, ज्ञान गोष्ठी के एक और अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी पहली मेजबान।
और मैं हूं आपका दूसरा मेजबान। आज हम एक ऐसे शब्द की तह तक जाएंगे जो आजकल हर किसी की जुबान पर है, इनोवेशन, मतलब नवाचार।
हाँ हाँ, नवाचार।
पर क्या हम सच में समझते हैं कि है क्या भला और ये होता कैसे है?
बिल्कुल, ये शब्द जितना सुनने में आता है ना, उतना ही शायद इसे लेकर थोड़ा धुंधला का भी है।
सही कहा, कोई इसे जादू समझता है, कोई सोचता है बस किस्मत की बात
हाँ
है।
हाँ,
लेकिन आज हम इसी धुंध को थोड़ा हटाने की कोशिश करेंगे
और इसके लिए हम दो बहुत ही काबिल विचारकों, मार्क डॉटसन और डेविड गैन, उनके नजरिए को समझेंगे।
अच्छा,
हम उनके काम, खासकर उनकी एक किताब है इनोवेशन, अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन, और जो उनका इनोवेशन मैनेजमेंट पर काम है उसके आधार पर बात करेंगे।
और ये जरूरी क्यों है आज? मतलब इनोवेशन की बात तो हर कोई कर रहा है।
देखिए, जरूरी इसलिए है क्योंकि आज आप चाहे बिजनेस में हो, नौकरी में, या बस दुनिया को समझना चाहते हो, इनोवेशन को समझे बिना आगे बढ़ना मुश्किल हो गया है।
हाँ, ये तो है।
ये सिर्फ कंपनियों के लिए नहीं है, ये तो पूरे समाज और अर्थव्यवस्था की तरक्की का, आप कह सकते हैं, इंजन बन गया है।
तो सवाल ये है कि क्या ये वाकई कोई रहस्य है या इसे समझा जा सकता है, सीखा जा सकता है?
बिल्कुल, यही सवाल है और इसी का जवाब हम ढूंढेंगे।
तो चलिए पहले उन दो लोगों को थोड़ा जान लेते हैं जिनके विचारों पर हम बात करने वाले हैं।
हाँ, पहले मार्क डॉटसन। ये यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड और इंपीरियल कॉलेज लंदन, बड़े नाम है ये, इनसे जुड़े हैं।
अच्छा,
और वो इस बात के माहिर हैं कि कंपनियां, खासकर एशिया में, इनोवेशन को कैसे साधती हैं, कैसे मैनेज करती हैं।
मतलब उनका फोकस मैनेजमेंट और स्ट्रेटजी पर ज्यादा है।
हाँ बिल्कुल, मैनेजमेंट और स्ट्रेटजी। और उनके साथी हैं डेविड गैन।
डेविड गैन
ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के सईद बिजनेस स्कूल में प्रोफेसर हैं और पहले इंपीरियल कॉलेज लंदन में इनोवेशन के वाइस प्रेसिडेंट भी थे।
अरे वाह,
और मजे की बात यह है कि वो बैकग्राउंड से इंजीनियर हैं।
ओहो, इंजीनियर, फिर तो टेक्निकल साइड मजबूत होगी।
जबरदस्त, उनकी पकड़ इनोवेशन के तकनीकी पहलुओं पर बहुत गहरी है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, स्मार्ट सिटीज, डिजिटल टेक्नोलॉजी, इन सब पर।
और उन्होंने सरकारों वगैरह को भी सलाह दी है?
हाँ, सरकारों और बड़ी कंपनियों को नीतियां बनाने में भी मदद की है।
कमाल है, मतलब एक विशेषज्ञ रणनीति और प्रबंधन देख रहा है और दूसरा तकनीक और सिस्टम की गहराइयों को समझ रहा है।
ये तो बढ़िया कॉम्बिनेशन
है ना, सिक्के के दो पहलू जानने जैसा।
हमें सिर्फ ये नहीं पता चलेगा कि क्या करना है, बल्कि कैसे करना है और किन चीजों से करना है, वो नजरिया भी मिलेगा।
सही कहा, यही तो उनकी जोड़ी की खासियत लग रही है। एक मैनेजमेंट पर जोर दे रहा है, दूसरा तकनीक और नीति पर।
और दोनों को जमीनी हकीकत पता है, सिर्फ किताबी बातें नहीं।
इसीलिए शायद वो इनोवेशन जैसे थोड़े मुश्किल विषय को आसान बना सकते हैं।
उम्मीद तो यही है।
तो फिर उनकी किताबों का निचोड़ क्या है, मतलब वो इनोवेशन को देखते कैसे हैं?
देखिए, उनका मकसद इसे किसी भारी भरकम परिभाषा में बांधना नहीं है।
अच्छा,
वो इसे एक जीती जागती बदलती हुई प्रणाली, एक डायनेमिक सिस्टम की तरह समझाना चाहते हैं।
डायनेमिक सिस्टम।
और ये किताबें सिर्फ मैनेजर या इंजीनियर के लिए नहीं है, ये हर उस इंसान के लिए हैं जो ये समझना चाहते हैं कि भाई ये इनोवेशन चीज आखिर है क्या और हमारी जिंदगी को कैसे बदल रही है।
ठीक है, और उनका सबसे बड़ा दावा क्या है? कोई एक मुख्य बात जो वो हमें समझाना चाहते हैं?
हाँ, उनका जो सेंट्रल आइडिया है वो ये है कि इनोवेशन सिर्फ कोई नया आइडिया सोच लेना या कुछ आविष्कार कर लेना उतना ही नहीं है।
अच्छा, वो तो शुरुआत है बस।
हाँ, वो तो बस कहानी की शुरुआत है। असली इनोवेशन है उस आइडिया को लेना और उसे एक उपयोगी चीज में बदलना।
उपयोगी चीज जैसे?
चाहे वो कोई प्रोडक्ट हो, कोई सर्विस हो, या काम करने का कोई नया तरीका हो। और ये पूरी यात्रा है, अक्सर मुश्किल होती है, उबड़ खाबड़ होती है। और ये यात्रा खत्म तब होती है जब उससे सच में कोई कीमत, कोई वैल्यू पैदा हो।
वैल्यू, चाहे वो बाजार के लिए हो, समाज के लिए या किसी कंपनी के लिए।
बिल्कुल,
ये फर्क समझना वाकई जरूरी है। मतलब जैसे आपने कहा, आविष्कार और नवाचार।
हाँ,
जैसे सिर्फ बिजली का बल्ब बना देना,
हाँ,
आविष्कार था।
लेकिन
एडिसन ने जो पूरा सिस्टम बनाया, बिजली बनाना, घरों तक पहुंचाना, वो असली इनोवेशन था। उसने दुनिया बदली।
बिल्कुल सही पकड़ा, यही फर्क है। और एक और बड़ी गलतफहमी है जिसे डॉटसन और गैन तोड़ते हैं।
वो क्या?
वो है अकेले जीनियस वाली बात, लोन जीनियस का मिथक।
अरे हाँ, हम अक्सर सोचते हैं ना कि कोई एक सुपर स्मार्ट इंसान आया और उसने अकेले ही सब कुछ बदल दिया,
जैसे स्टीव जॉब्स का नाम आता है या आइंस्टाइन का।
हाँ बिल्कुल।
लेकिन डॉटसन और गैन कहते हैं कि ज्यादातर इनोवेशन अकेले नहीं होते।
अच्छा।
ये टीम का काम होता है, कई लोगों का मिला जुला प्रयास, एक कोलैबोरेटिव एफर्ट होता है। और ये प्रक्रिया अक्सर सीधी सपाट नहीं होती, काफी उलझी हुई, मेसी और अनप्रेडिक्टेबल भी हो सकती है।
ये तो बहुत दिलचस्प बात है। मतलब सफलता के पीछे सिर्फ एक चेहरा नहीं बल्कि एक पूरा तंत्र, एक पूरी टीम काम कर रही होती है।
सही। और यही उनकी एक और सबसे बड़ी और शायद सबसे चौंकाने वाली बात आती है।
बताइए।
आमतौर पर हम इनोवेशन को किस्मत मानते हैं या किसी जीनियस का कमाल।
हाँ।
लेकिन डॉटसन और गैन का सबसे बड़ा दावा शायद यही है कि ये एक सीखा जा सकने वाला हुनर है, एक व्यवस्थित क्षमता है, सिस्टमैटिक कैपेबिलिटी।
सीखा जा सकने वाला हुनर, सच में?
हाँ, सोचिए, इसका मतलब है कि कोई भी कंपनी या यहां तक कि हम और आप भी सही तरीके अपनाकर ज्यादा इनोवेटिव बन सकते हैं।
अरे वाह।
ये कोई जादू नहीं है बल्कि एक प्रक्रिया है जिसे समझा जा सकता है, सीखा जा सकता है और सुधारा जा सकता है।
वाह, ये तो बड़ी उम्मीद जगाने वाली बात है कि इनोवेशन मतलब सबके बस की बात हो सकती है अगर सही तरीका पता हो।
बिल्कुल।
चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक सवाल से कि ये इनोवेशन है क्या और कितने तरह का होता है।
जैसा हमने कहा, पहला फर्क तो साफ है आविष्कार और नवाचार का।
हाँ, इन्वेंशन और इनोवेशन।
इन्वेंशन है नया आइडिया या खोज, इनोवेशन है उस आइडिया का कामयाब अमल, सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन, और उसको बड़े पैमाने पर अपनाना जिससे कोई वैल्यू बने।
यहीं पे शायद वो मशहूर अर्थशास्त्री जोसेफ शुम्पीटर, उनका नाम आता है।
हाँ बिल्कुल, शुम्पीटर।
और उनका वो रचनात्मक विनाश वाला आइडिया, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, ये सुनने में थोड़ा डरावना सा लगता है।
हाँ, शब्द थोड़ा भारी है पर आइडिया बहुत गहरा है।
क्या है वो?
शुम्पीटर का कहना था कि पूंजीवाद जो है वो लगातार रचनात्मक विनाश के दौर से गुजरता है। मतलब जब कोई नया बेहतर इनोवेशन आता है तो वो पुराने उद्योगों को, पुरानी तकनीकों को, काम करने के पुराने तरीकों को खत्म कर देता है।
ओह,
ये विनाशकारी लगता है लेकिन इसी से तरक्की होती है, नए बाजार बनते हैं, नई नौकरियां पैदा होती हैं।
अच्छा।
जैसे सोखिए डिजिटल कैमराज आए तो फिल्म रोल वाली कंपनियां वो तो गई।
हाँ, वो तो गायब भी हो गई।
लेकिन फोटोग्राफी कितनी आसान और सस्ती हो गई, तो ये विनाश भी है और रचना भी।
समझ गई। और इनोवेशन सिर्फ नया फोन बनाने जैसा प्रोडक्ट इनोवेशन ही नहीं होता है ना?
नहीं, बिल्कुल नहीं।
डॉटसन और गेन इसके और भी रूप बताते हैं।
हाँ, कई शक्लों में आता है ये। सोचिए हेनरी फोर्ड की असेंबली लाइन।
हाँ, गाड़ियों वाली।
वो गाड़ियों में कोई नया पुर्जा नहीं था, वो गाड़ी बनाने के तरीके में इनोवेशन था, प्रोसेस इनोवेशन।
अरे हाँ।
या फिर नेटफ्लिक्स को देखिए।
नेटफ्लिक्स, उन्होंने तो पूरा खेल ही बदल दिया।
पहले डीवीडी किराए पर देते थे, फिर ऑनलाइन स्ट्रीमिंग पर आ गए, अपना पूरा बिजनेस मॉडल ही बदल डाला।
सही बात है।
तो इनोवेशन प्रोडक्ट में हो सकता है, प्रोसेस में हो सकता है, मार्केटिंग के तरीके में हो सकता है।
जैसे नाइकी, वो सिर्फ जूते नहीं बेचते, एक लाइफस्टाइल बेचते हैं।
बिल्कुल। या फिर पूरे बिजनेस मॉडल में।
समझ गई। तो ये तो हुई बात कि इनोवेशन क्या है और कैसा दिख सकता है। अब आते हैं सवाल पर कि ये होता कैसे है, मतलब कौन लोग हैं इसके पीछे, कैसा माहौल चाहिए इसके लिए।
इसमें कई खिलाड़ी शामिल हैं।
अच्छा।
सबसे पहले आते हैं उद्यमी, एंटरप्रेन्योर्स।
जी।
शुम्पीटर तो इन्हें ही रचनात्मक विनाश का हीरो मानते थे।
हीरो?
हाँ, ये वो लोग हैं जो मौका देखते हैं, रिस्क लेते हैं और पैसा, लोग, तकनीक, इन सब को नए ढंग से जोड़कर कुछ नया खड़ा कर देते हैं।
जैसे वो एडिसन का उदाहरण आपने दिया था।
हाँ।
वो सिर्फ बल्ब के आविष्कारक नहीं थे, उन्होंने मेनलो पार्क में पहली इंडस्ट्रियल रिसर्च लैब बनाई।
हाँ।
एक तरह से उन्होंने इनोवेशन करने को ही एक सिस्टम बना दिया।
बेहतरीन उदाहरण है ये। फिर आती हैं कंपनियां और उनके नेटवर्क्स, फर्म्स एंड नेटवर्क्स। एक जमाना था जब बड़ी बड़ी कंपनियां अपनी बड़ी बड़ी R&D लैब्स में बंद दरवाजों के पीछे सारे इनोवेशंस करती थी।
हाँ, वो सफेद कोट वाले वैज्ञानिक, पुरानी फिल्मों जैसा।
हाँ हाँ, लेकिन अब तस्वीर बदल गई है।
कैसे?
आज का दौर है खुला नवाचार का, ओपन इनोवेशन।
ओपन इनोवेशन, ये क्या है?
इसका मतलब है कि कंपनियां अब सिर्फ अपने दिमाग के दरवाजे बंद करके काम नहीं करती।
अच्छा।
वे खिड़कियां खोलती हैं, बाहर से ताजी हवा, नए आइडिया आने देती हैं।
बाहर से मतलब कहां से?
कहीं से भी, यूनिवर्सिटी से, छोटे स्टार्टअप से, ग्राहकों से, अरे कभी कभी तो अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ मिलकर भी।
सच में? कॉम्पिटिटर्स के साथ?
हाँ, यानी अब अकेले चलने का जमाना नहीं रहा। सिलिकन वैली को देखिए, वहां क्या है, कंपनियां हैं, पैसा लगाने वाले वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, स्टैनफोर्ड जैसी टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, दुनिया भर से आया टैलेंट है।
हाँ, वो तो हब है पूरा,
सब एक दूसरे से जुड़े हैं। ये पूरा इकोसिस्टम मिलकर इनोवेशन को वो रफ्तार देता है जो अकेले शायद मुमकिन ही नहीं।
सही बात है, आज कंपटीशन में टिके रहने के लिए बाहर क्या हो रहा है उस पे नजर रखना और दूसरों से जुड़ना जरूरी हो गया है।
बिल्कुल।
और इसमें सरकारों या संस्थानों की क्या भूमिका है, इंस्टीट्यूशंस, क्या वो सिर्फ नियम बनाते हैं या कुछ और भी करते हैं?
उनकी भूमिका बहुत अहम है और सिर्फ नियम बनाने तक सीमित नहीं है।
अच्छा,
इनोवेशन के फलने फूलने के लिए एक उपजाऊ जमीन चाहिए ना?
हाँ,
वो जमीन तैयार करने में संस्थानों का बड़ा हाथ होता है। सरकारें अक्सर उस बेसिक रिसर्च में पैसा लगाती हैं।
बेसिक रिसर्च मतलब
वो रिसर्च जो बहुत खर्चीली होती है, बहुत रिस्की होती है, जिसका तुरंत कोई फायदा शायद न दिखे, जैसे इंटरनेट की शुरुआत हुई या ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट।
हाँ, ये तो बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स थे।
ये वो रिसर्च है जिस पर भविष्य के बड़े इनोवेशन टिके होते हैं। और इसके अलावा शिक्षा नीतियां जो स्किल्ड लोग तैयार करती हैं, पेटेंट जैसे कानून जो आविष्कारकों को उनका हक और प्रोत्साहन देते हैं, कॉम्पिटिशन को बढ़ावा देने वाली नीतियां, ये सब मिलकर किसी देश का राष्ट्रीय नवाचार प्रणाली बनाते हैं, नेशनल इनोवेशन सिस्टम।
अच्छा, नेशनल इनोवेशन सिस्टम ये तय करता है कि उस देश में इनोवेशन कितना आसान या मुश्किल होगा।
बिल्कुल
ठीक है, तो ये तो हुए किरदार और माहौल। अब जरा उस प्रक्रिया पर आते हैं, प्रोसेस पर, जिसके जरिए ये इनोवेशन असल में होता है। क्या ये कोई सीधा साधा रास्ता है कि आइडिया आया, प्रोडक्ट बनाया, बेच दिया?
काश काश इतना आसान होता। डॉटसन और गैन जोर देते हैं कि इनोवेशन की प्रक्रिया सीधी रेखा में नहीं चलती, लीनियर नहीं होती।
तो फिर कैसी होती है
ये गोल गोल घूमने वाली, आगे पीछे जाने वाली, इटरेटिव प्रक्रिया है।
इटरेटिव मतलब दोहराव वाली।
हाँ, इसमें आप मौका पहचानते हैं, आइडिया सोचते हैं, उसे बनाते हैं, टेस्ट करते हैं, बाजार में ले जाते हैं, लेकिन इस दौरान कई बार आपको पीछे लौटना पड़ता है, गलतियां होती हैं, उनसे सीखना पड़ता है और फिर रास्ता बदलना पड़ता है।
यानी इसमें प्रयोग करने और गलतियों से सीखने की बहुत गुंजाइश है, फेल होने का डर नहीं होना चाहिए।
बिल्कुल बिल्कुल, सफल कंपनियां जैसे गूगल हैं, 3M है, वो इसी पर जोर देती हैं।
वो क्या करती हैं?
वो ग्राहकों को शुरुआत से शामिल करती हैं, जल्दी जल्दी प्रोटोटाइप बनाती हैं, छोटे पैमाने पर प्रयोग करती हैं और नतीजों से सीख कर फटाफट बदलाव करती हैं। ये एक लगातार चलने वाला सीखने का चक्र है, लर्निंग साइकिल।
और हाँ, आपने कहा था व्यक्तिगत स्तर पर भी हम ये गुण सीख सकते हैं, जैसे क्रिएटिव सोचना, रिस्क लेना।
हाँ, हार ना मानना, चीजों में पैटर्न ढूंढना, ये सब सीखे जा सकते हैं, ये कोई पैदाइशी देन नहीं है।
और किसी कंपनी या संगठन के स्तर पर क्या जरूरी है, सिर्फ अच्छे लोग होना काफी है या और भी कुछ चाहिए?
नहीं, सिर्फ लोग काफी नहीं है, लोगों के साथ साथ सही माहौल, मतलब कल्चर, सही ढांचा, स्ट्रक्चर और सही प्रक्रियाएं, प्रोसेस, ये सब चाहिए।
ऐसा कल्चर जहां नए आइडियाज का स्वागत हो।
हाँ, जहां सवाल पूछने को बढ़ावा मिले, जहां लोग बिना डर के प्रयोग कर सकें, और अगर फेल हों तो उसे सीखने का मौका माना जाए, ना कि सजा का कारण।
ये जरूरी है।
और यहाँ एक बड़ी चुनौती आती है जिसे एक्सपर्ट्स कहते हैं एम्बिडेक्सटेरिटी।
एम्बिडेक्सटेरिटी, ये क्या होता है?
इसका मतलब है दोनों हाथों से काम करने की क्षमता।
दोनों हाथों से मतलब
ये कि कंपनी को अपना मौजूदा काम, जिससे पैसा आ रहा है, उसे पूरी कुशलता से करते रहना है।
ठीक है,
जैसे एक हाथ से आप जगलिंग कर रहे हैं, लेकिन साथ ही उसे भविष्य के लिए नए अवसरों को खोजना है, नई चीजें ट्राई करनी है, नए प्रयोग करने हैं।
अच्छा,
जैसे दूसरे हाथ से आप एक नई ट्रिक सीख रहे हैं। ये संतुलन साधना, आज की कमाई और कल की तैयारी के बीच, ये बहुत मुश्किल है।
हाँ, ये तो सर्कस के कलाकार जैसा हो गया। दोनों काम एक साथ करने हैं।
बिल्कुल, ये संतुलन साधना वाकई चुनौतीपूर्ण लगता है। रचनात्मकता भी चाहिए और अनुशासन भी।
हाँ, और इसी मैनेजमेंट के लिए फिर वो स्टेज गेट प्रक्रिया या एजाइल जैसे तरीके अपनाए जाते हैं।
सही, लेकिन मूल चुनौती वही है, खुलेपन और नियंत्रण के बीच सही तालमेल बिठाना।
ठीक है, तो हमने समझा कि इनोवेशन क्या है, कैसे होता है और इसे मैनेज भी किया जा सकता है, लेकिन इसके नतीजे क्या होते हैं? क्या इनोवेशन हमेशा अच्छा ही होता है? क्या असर पड़ते हैं इसके?
देखिए, फायदे तो साफ हैं, हम सब जानते हैं, बेहतर दवाएं, फोन पर दुनिया भर की जानकारी, आसान जिंदगी, नए उद्योग।
हाँ, ये तो है,
लेकिन जैसा शुम्पीटर ने कहा था, इसका एक विनाशकारी पहलू भी है।
विनाशकारी?
जब नई तकनीक आती है तो वो पुरानी नौकरियों को खत्म कर सकती है।
ओहो,
सोचिए जब कंप्यूटर आए तो टाइपराइटर बनाने वालों का क्या हुआ? ऑटोमेशन से आज फैक्ट्री मजदूरों की नौकरियों पे खतरा है।
हाँ, ये चिंता तो है, और शायद इससे अमीर और गरीब के बीच की खाई भी बढ़ती है, ऐसा होता है क्या?
ये भी एक चिंता है। अक्सर इनोवेशन का फायदा उन लोगों को ज्यादा मिलता है जिनके पास पैसा होता है, हुनर होता है या पहुंच होती है। इससे समाज में असमानता बढ़ सकती है और फिर इसके अनचाहे दुष्प्रभाव भी होते हैं, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज।
जैसे
फैक्ट्रियों से प्रदूषण,
या
आज AI और जेनेटिक इंजीनियरिंग को लेकर जो नैतिक सवाल उठ रहे हैं।
हाँ, ये तो है।
तो ये दो धारी तलवार हुई।
बिल्कुल,
मतलब ये जरूरी है कि हम सिर्फ इनोवेशन करने पर ही ध्यान न दें, बल्कि उसके परिणामों को कैसे संभालें इस पर भी सोचें।
बिल्कुल सही।
समाज को ऐसी नीतियां बनानी होंगी जिससे इनोवेशन के फायदे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचें और उसके नुकसान कम से कम हों।
और अगर हम भविष्य की तरफ देखें, आगे क्या इनोवेशन को कौन सी बड़ी चीजें प्रभावित करेंगी?
लेखक कुछ बड़े ट्रेंड्स बताते हैं।
पहला,
जाहिर है डिजिटलीकरण, AI, बिग डेटा, ये चीजें हर सेक्टर को बदल रही हैं।
हाँ।
दूसरा, ग्लोबल जुड़ाव। आइडियाज और टैलेंट अब दुनिया भर में फैल रहे हैं, हालांकि देशों के बीच तनाव इसमें रुकावट डाल सकता है।
ये भी है।
तीसरा और शायद सबसे अहम, सस्टेनेबिलिटी,
स्थिरता,
पर्यावरण। हाँ, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण की चिंता अब इनोवेशन के लिए सबसे बड़ी चुनौती भी है और सबसे बड़ा अवसर भी।
अवसर कैसे?
हमें ऊर्जा, भोजन, ट्रांसपोर्टेशन, इन क्षेत्रों में बड़े बदलाव लाने वाले इनोवेशन चाहिए होंगे। क्लीन एनर्जी, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ये सब।
सही बात है। और चौथा?
चौथा है सामाजिक नवाचार, सोशल इनोवेशन।
ये क्या है?
यानी गरीबी, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऐसी सामाजिक समस्याओं के हल के लिए नए तरीके खोजना। जैसे केन्या में एम-पेसा मोबाइल बैंकिंग ने लाखों लोगों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा, वो एक सोशल इनोवेशन था।
अरे वाह, ये तो बहुत जरूरी है। तो ऐसा लगता है भविष्य का इनोवेशन और ज्यादा खुला होगा, ज्यादा सहयोगी होगा, डेटा पर आधारित होगा और शायद किसी बड़े मकसद पर केंद्रित होगा, जैसे पर्यावरण बचाना या गरीबी मिटाना।
हाँ, उम्मीद तो यही है।
तो हमने काफी गहराई से बात की। अगर हमें डॉटसन और गैन के विचारों से कुछ मुख्य बातें निकालनी हो, कुछ टेकअवेज, तो वो क्या होंगी जो श्रोताओं को याद रखनी चाहिए?
मेरे ख्याल से पहली और सबसे जरूरी बात यह है कि इनोवेशन एक सिस्टम है, कोई अकेली घटना नहीं।
सिस्टम।
इसमें लोग, कंपनियां, सरकारें, यूनिवर्सिटीज सब शामिल हैं। वो अकेला जीनियस वाला आइडिया वो ज्यादातर एक कहानी ही है, असलियत में ये एक टीम गेम है।
दूसरी बात जो मुझे बहुत अहम लगी वो है, आइडिया होना काफी नहीं है, उसे हकीकत बनाना असली चुनौती है।
हाँ, वो आविष्कार और नवाचार का फर्क, एग्जीक्यूशन इज की।
बिल्कुल।
तीसरा, शुम्पिटर का रचनात्मक विनाश का सिद्धांत, उसे याद रखना जरूरी है।
हाँ, कि बदलाव जरूरी है।
इनोवेशन बदलाव लाता है और बदलाव भी जरूरी है, लेकिन हमें उसके सामाजिक असर, जैसे नौकरियों पर प्रभाव या बढ़ती असमानता, उसके बारे में भी सोचना होगा।
चौथा,
इनोवेशन करने का तरीका लगातार बदल रहा है। एडिसन की लैब से आज हम ओपन नेटवर्क वाले मॉडल तक आ गए हैं, जहां सहयोग बहुत जरूरी है। आज अकेले दम पर दुनिया बदलना मुश्किल है।
सही कहा।
और पांचवा, जो शायद सबसे ज्यादा उम्मीद बंधाता है, इनोवेशन कोई रहस्यमयी कला नहीं है, बल्कि एक व्यवस्थित क्षमता है जिसे सीखा और सुधारा जा सकता है।
हाँ, ये बात।
इसका मतलब है कि कोशिश करने से, सही तरीके अपनाने से इनोवेशन को बढ़ावा दिया जा सकता है।
भारत में भी हम ये चीजें देख सकते हैं ना, जैसे ये स्टार्टअप्स का जो पूरा माहौल बना है।
हाँ, बिल्कुल।
जहाँ सरकार, निवेशक, मेंटर्स सब मिलकर नए आइडियाज को आगे बढ़ा रहे हैं, ये उसी इकोसिस्टम सोच का उदाहरण है।
सही। या कई बार हम कम संसाधनों में भी कमाल के जुगाड़ देखते हैं, या प्रोसेस इनोवेशन, वो भी इसी क्षमता का एक रूप है।
हाँ, जुगाड़ इनोवेशन। बिल्कुल।
अच्छा, अब कुछ ऐसी बातें हैं जो इस पूरी चर्चा में मेरे दिमाग में अटक गई हैं। कुछ ऐसे विचार जो सोचने पर मजबूर करते हैं।
जरूर साझा कीजिए।
मेरे लिए भी एक ऐसी बात थी, असफलता नवाचार का विपरीत नहीं है, यह नवाचार प्रक्रिया का एक अनिवार्य घटक है।
ये बहुत जरूरी है। ये सोचना कि फेल होना प्रोसेस का हिस्सा है, अंत नहीं, ये डर कम करता है, कोशिश करने का हौसला देता है।
सही बात है। अगर आप कुछ नया कर रहे हैं तो गलतियां होंगी, उनसे सीखना जरूरी है।
बिल्कुल। आपके दिमाग में क्या अटका?
मेरे लिए जो बात थी वो ये कि सबसे नवीन संगठन वे हैं जो एक साथ अपनी मौजूदा क्षमताओं का फायदा उठा सकते हैं और नए अवसरों की खोज कर सकते हैं। वो एम्बिडेक्सटरिटी वाली बात।
हाँ, वो संतुलन वाली बात।
हाँ, ये संतुलन साधना कितना मुश्किल होगा, पर कितना जरूरी है। आज के काम को अच्छे से करना और कल के लिए तैयारी भी करना, ये हर संगठन और शायद हर व्यक्ति के लिए भी एक चुनौती है।
और एक और विचार था ना, वो इकोसिस्टम वाला।
हाँ,
सफल नवाचार शायद ही कभी अकेले काम करने वाली एक फर्म से उभरता है। ये फर्मों, विश्वविद्यालयों, वित्त पोषकों और सरकारी नीतियों के जटिल इकोसिस्टम से पैदा होता है।
सही है।
ये बार बार याद दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं और सफलता के लिए दूसरों के साथ जुड़ना कितना जरूरी है। तो ये सब सुनने के बाद सवाल उठता है कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में या काम में इन विचारों का क्या करें, कैसे इस्तेमाल करें।
हाँ, ये जानना सबसे जरूरी है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है।
जैसे अगर कोई किसी कंपनी में काम करता है, एक प्रोफेशनल है, तो वो क्या कर सकता है?
उनके लिए शायद पहला कदम ये हो सकता है कि सिर्फ नए प्रोडक्ट के बारे में ना सोचें।
अच्छा।
अपने काम करने के तरीके, अपनी टीम की प्रक्रियाओं या कंपनी के तौर तरीकों में सुधार के मौके तलाशें। पूछें, क्या इसे बेहतर किया जा सकता है, तेज या सस्ता। अपनी टीम के बाहर दूसरे डिपार्टमेंट के लोगों से बात करें, बाहर की दुनिया पर नजर रखें, ग्राहक क्या कह रहे हैं, इंडस्ट्री में क्या नया हो रहा है।
और प्रयोग करने से न डरें।
हाँ, छोटे छोटे प्रयोग करें, नतीजे देखें और सीखें।
और जो उद्यमी हैं, जो अपना कुछ नया शुरू कर रहे हैं या करना चाहते हैं,
उनके लिए सबक है कि सिर्फ अपने आइडिया के प्यार में ना पड़ें।
हाँ हाँ ये होता है अक्सर।
पूरा इकोसिस्टम देखें, पार्टनर कौन होंगे, पैसा कहाँ से आएगा, ग्राहक क्या चाहते हैं, नियम कानून क्या हैं, नेटवर्क बनाएं, लोगों से मिलें। सिर्फ प्रोडक्ट पर नहीं, बल्कि उसे बनाने, बेचने और उससे पैसा कमाने के पूरे मॉडल पर ध्यान दें। याद रखें, एडिसन ने सिर्फ बल्ब नहीं, पूरा बिजली सिस्टम बनाया था।
सही। और जो लोग नीतियां बनाते हैं, सरकार में हैं, उनके लिए क्या टेकअवे हैं?
उनके लिए संदेश है कि पूरी राष्ट्रीय नवाचार प्रणाली को देखें, एक होलिस्टिक व्यू लें।
अच्छा।
क्या शिक्षा व्यवस्था भविष्य के लिए तैयार है? क्या रिसर्च के लिए पर्याप्त फंड हैं? क्या कानून नए प्रयोगों को बढ़ावा देते हैं? क्या पेटेंट सिस्टम सही काम कर रहा है? बुनियादी रिसर्च में निवेश करें और साथ ही इनोवेशन से पैदा होने वाली चुनौतियों, जैसे नौकरियों का जाना या असमानता बढ़ना, उनसे निपटने के लिए भी योजनाएं बनाएं।
ठीक है। और हम सबके लिए, एक आम नागरिक के तौर पर,
शायद सबसे जरूरी है कि हम जिज्ञासु बने, क्यूरियस रहें।
जिज्ञासु।
हाँ, नई चीजों के बारे में जानें, सवाल पूछें। जब कोई नया ऐप देखें या गैजेट या कोई नई सर्विस, तो सोचें, ये क्या समस्या हल कर रहा है, इसका असर क्या होगा, किसे फायदा किसे नुकसान।
मतलब एक जागरूक नजरिया रखें।
हाँ, एक जागरूक और थोड़ा आलोचनात्मक नजरिया रखें। इनोवेशन की सिर्फ जय जयकार ना करें, उसके दूसरे पहलुओं पर भी ध्यान दें।
बहुत बढ़िया। तो आज की इस गहरी चर्चा से आपके लिए सबसे बड़ी सीख या सबसे चौंकाने वाली बात क्या रही?
मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह समझना था कि इनोवेशन वाकई में एक इकोसिस्टम का खेल है। वो अकेले जीनियस वाली बात दिमाग से निकल गई।
हाँ,
सहयोग, नेटवर्क, सही माहौल, ये चीजें ज्यादा मायने रखती हैं। और ये विचार कि इनोवेशन का इस्तेमाल जलवायु परिवर्तन जैसी बड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए किया जा सकता है, ये बहुत शक्तिशाली लगा।
और मेरे लिए सबसे बड़ी राहत की बात ये जानना था कि इनोवेशन कोई जादू नहीं है, बल्कि एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसे सीखा जा सकता है। ये सोच के हम सब अपने अपने स्तर पर इनोवेटिव बन सकते हैं, ये बहुत सशक्त महसूस कराती है। और हाँ, शुम्पीटर का वो रचनात्मक विनाश का विचार डराने के साथ साथ ये भी याद दिलाता है कि बदलाव ही जिंदगी है और तरक्की के लिए पुरानी चीजों को छोड़ना भी पड़ता है।
सही कहा।
तो श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़ जाते हैं।
हाँ, जरूर। जरा सोचिए, आप अपने आसपास, अपने ऑफिस में, अपने मोहल्ले में या अपने दोस्तों के बीच ऐसा क्या छोटा सा कदम उठा सकते हैं जिससे नए आइडियाज को थोड़ी हवा मिले या लोग मिलकर कुछ नया करने की सोचें। जरूरी नहीं कि हम अगला गूगल या टेस्ला बनाएं, पर क्या हम अपने आसपास इनोवेशन की एक छोटी सी चिंगारी जला सकते हैं?
क्या बात है। इसी सोच के साथ आज विदा लेते हैं।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए इक्वेटर फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।